ग्रुप नंबर दो, परमात्म प्यार ही ब्राह्मण जीवन का आधार है। न्यारे बनो तो इस प्यार के पात्र बन जाएंगे, ये हेडिंग है। सभी अपने को प्रवृत्ति में रहते न्यारे और प्यारे अनुभव करते हो कि प्रवृत्ति में रहने से प्रवृत्ति के प्यारे हो जाते हो, न्यारे नहीं हो सकते हो। जो न्यारा रहता है वही हर कर्म में प्रभु प्यार अर्थात बाप के प्यार का अनुभव करता है। अगर न्यारे नहीं रहते तो परमात्म प्यार का अनुभव भी नहीं करते, और परमात्म प्यार ही ब्राह्मण जीवन का आधार है, विशेष आधार है। वैसे भी कहा जाता है कि प्यार है तो जीवन है, प्यार नहीं तो जीवन नहीं। तो ब्राह्मण जीवन का आधार है ही परमात्म प्यार, और वो तब मिलेगा जब न्यारे रहेंगे। लगाव है तो परमात्म प्यार नहीं, न्यारा है तो प्यार मिलेगा। इसीलिए गायन है जितना न्यारा उतना प्यारा। वैसे स्थूल रूप में लौकिक जीवन में अगर कोई न्यारा हो जाए तो कहेंगे कि ये प्यार का पात्र नहीं है, लेकिन यहाँ जितना न्यारा उतना प्यारा। जरा भी लगाव नहीं लेकिन सेवाधारी। अगर प्रवृत्ति में रहते हो तो सेवा के लिए रहते हो। कभी भी ये नहीं समझे कि हिसाब किताब है, कर्म बंधन है, लेकिन सेवा है। सेवा के बंधन में बंधने से कर्म बंधन खत्म हो जाता है। जब तक सेवा भाव नहीं होता तो कर्म बंधन खींचता रहता है। बाप ने डायरेक्शन दिया है उसी श्रीमत पर रहे हुए हो, अपने हिसाब किताब से नहीं। कर्म बंधन है या सेवा का बंधन है उसकी निशानी है, कर्म बंधन है या सेवा का बंधन है उसकी निशानी है। अगर कर्म बंधन होगा तो दुख की लहर आएगी, थकावट होगी, दुख की लहर आएगी, और सेवा का बंधन होगा तो दुख की लहर नहीं आएगी, खुशी होगी। तो कभी भी किसी भी समय अगर दुख की लहर आती है तो समझो ये कर्म बंधन। कर्म बंधन को बदलकर सेवा का बंधन नहीं बनाया है, परिवर्तन करना नहीं आया है। विश्व सेवादारी है तो विश्व में जहां भी हो तो सेवा, विश्व सेवार्थ हो, ये पक्का याद रहता है। या कर्म बंद, कभी कर्म बंधन में फंस भी जाते हो, सेवादारी कभी फंसेगा नहीं, वो न्यारा और प्यारा रहेगा। समझते तो हो कि न्यारे रहना है, लेकिन जब कोई परिस्थिति आती है तो उस समय न्यारे रहो, कोई परिस्थिति नहीं है तो उस समय लौकिक में भी न्यारे रहते हो, लेकिन अलौकिक जीवन में सदा ही न्यारे, कभी कभी नहीं। उस समय तो लौकिक में भी न्यारे रहते हो लेकिन अलौकिक जीवन में सदा ही न्यारे, कभी कभी न्यारे नहीं, सदा ही न्यारे। कभी कभी वाले तो राज्य भी कभी कभी करेंगे। सदा राज्य करना तो, सदा राज्य करना है तो सदा न्यारा भी रहना है। इसलिए सदा शब्द को अंडरलाइन करो। सब संस्कार अभी भरने हैं, अगर अभी कभी कभी के संस्कार भरे तो वही भरे हुए संस्कार ही काम करेंगे। आधा कलम का जैसे रिकॉर्ड भरते हैं तो अगर थोड़ा भी नीचे ऊपर भर दिया है तो वैसे ही भर जाएगा ना। तो संगम पर ही 84 जन्मों के श्रेष्ठ राज करने के ऊंचे पद के संस्कार भरते हो, इसलिए अभी से हर पुरुषार्थ के सब्जेक्ट में सदा शब्द रखो, याद रखो, सदा शब्द देखो। पुरुषार्थ, हर पुरुषार्थ के सब्जेक्ट में सदा शब्द याद रखो। चल रहे हैं, कर रहे हैं, नहीं चल रहे हैं लेकिन किस गति से चल रहे हैं, कर रहे हैं लेकिन कैसा कर्म कर रहे हैं, ये तो चेक करना है ना। तो न्यारे रहने की निशानी है प्रभु प्यार की अनुभूति। और जितना प्यार होता है, न्यारे रहने की निशानी है प्रभु प्यार की अनुभूति, और जितना प्यार होता है उतना
न्यारे,
जिससे जितना प्यार होता है उससे उतना अलग नहीं हुआ जाता है, सदा साथ रहेंगे। प्यार उसको ही कहा जाता है जो सदा साथ रहे। तो परमात्म प्यार अर्थात सदा परमात्म साथ हो। कभी अपने को अकेले तो नहीं समझते हो, बाप साथ है ना। जब बाप साथ है तो बोझ अपने ऊपर नहीं उठाओ, बोझ बाप को देकर हल्के हो जाओ। बोझ रखते हो तो परेशान हो जाते हो, भारी हो जाते हो। हल्के रहो उड़ते रहो, हल्के रहो तो उड़ते रहेंगे। सब कुछ बाप के हवाले कर दो। हवाले मतलब हल्के कैसे रहेंगे, बाप के हवाले करेंगे तो। जो भी जिम्मेवारी है सब कुछ बाप के हवाले कर दो। जब कुछ है ही नहीं तो बोझ काहे का, कुछ रखा है तभी बोझ है, तभी परेशानी है। बाप के हवाले नहीं किया है, थोड़ा छिपा कर जेब खर्च रख लिया है क्या? जेब खर्च होता है तो कभी कभी काम में आ जाता है। तो माताओं ने जेब खर्च रखा है, वैसे भी माताओं की आदत होती है क्या, साड़ी में गठरी बांध कर रख लेती है। साड़ी के कोने में भी बांध लेती है तो अच्छी तरह से देखो कहाँ छुपा कर रखा तो नहीं। बाप के हवाले कर लिया अर्थात नष्टो मुआ हो गए। अच्छी तरह से देखो कहाँ छुपा कर रखा तो नहीं है। बाप के हवाले कर लिया है अर्थात नष्टो मुआ हो गए। पांडव नष्टो मुआ है हुँ? अच्छा नष्टो क्रोध है दूसरा नष्टो रोब है, या थोड़ा थोड़ा रोब आ जाता है। अधिकारी समझते हैं तो रोब आ जाता है। तो सिर्फ नष्टो मुआ नहीं, नष्टो क्रोध भी होना है, रोब भी नहीं निर्माण। तो इस वर्ष क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा रोब को छुट्टी देंगे। साल पूरा हुआ रोब भी पूरा हुआ कि कभी कभी उसको दोस्त बना लेंगे। काम की चीज नहीं है ना, ऐसे तो नहीं रोब तो करना पड़ेगा ना। तो नष्ट मुहूर्ता न्यारा और प्यारा, रहते हुए भी न्यारा। तो माताएं सभी हिम्मत वाली हो, इस वर्ष में मोह नहीं आएगा। मोह तो आधा कल्प का साथी है, ऐसे कैसे चला जाएगा। देख लिया ना नष्टुमा बनने से क्या होता है और मोह रखने से क्या होता है। तो देखेंगे अभी इस नए वर्ष में क्या कमाल करते हैं। अच्छा ये था बाबा, प्रवृत्ति वालों से मिल रहे हैं बाबा, प्रवृत्ति का ग्रुप बैठा होगा तो उनको बोल रहे हैं। विशेष माताओं में होता है मोह और भाइयों में रोग और क्रोध, क्योंकि अपने को अधिकारी समझते हैं सारे, मतलब घर में वो मुखिया होने के कारण भी, और अपना एक नशा होता है भाइयों का। हाँ वो तो बाबा युक्ति बताया है दोनों भाइयों में भी मोह होता है, लेकिन थोड़ा मात्रा माताओं में ज्यादा होता है। तो बाबा ने उनके लिए भी युक्ति बताया, हमारे लिए भी बताया कि प्रवृत्ति में रहते न्यारे और प्यारे अनुभव करते हो। अभी लास्ट में अमृतवेले के बाद गीत था कितना, सागर तेरा प्यार सागर से भी गहरा बाबा का। तो इतना अगर अच्छी तरह से जितना बाबा से गहराई से दिल से अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हो जाता है, तो नेचुरल है प्रवृत्ति में रहते हम निवृत्त रह सकते हैं। कल अभी अगले संडे की मुरली में है निवृत्त रहने का, प्रवृत्ति में रहते निवृत्त रहने का आधार बाबा ने बताया, मियाँ और बीवी, निराकार मियाँ और साकार में भी, तो वो कैसे मेल होगा। इसलिए हमको भी बाबा का जैसा रूप है, प्यार का स्वरूप है, उस स्थिति में स्थित होकर अगर बाबा से लवलीन स्थिति का अनुभव करेंगे, दूसरा हमको मोह रोभ क्रोध वाली जो हम उसको रूटीन वाला कार्य समझते हैं कर्म, लेकिन बाबा कहते उससे बहुत नुकसान हुआ। देख लिया ना, आधा कल्प से मोह में रहते कितना नुकसान हुआ, कितना तकलीफ हुआ, अभी तक थके नहीं है उस दुख से, उस मोह से। तो बाबा ने बोला भाइयों का भी रोग, मेरा अपना भी अनुभव है, हम भाइयों में बड़ा भाई होने के कारण थोड़ा अधिकारी समझता था उसको सहारने का ज्ञान काल में, मैं बड़ा भाई हूँ जैसा बोला वैसा उनको मानना चाहिए क्योंकि छोटे हैं, उनको उल्टा बोले तो हमको बहुत गुस्सा आना था, कभी कभी मार भी देता, मतलब उनकी अच्छाई के लिए मैं मार रहा हूँ ऐसा समझता था। लेकिन ज्ञान होने के बाद वो भी बाबा ने मना कर दिया, वो भी विकर्म हो जाता है। हर एक को अपना कर्म की फिलोसफी के अनुसार हर एक का अपना पार्ट है, कर्म है, फल है, लेकिन ब्लड कनेक्शन के नाते हमारे पार्ट में नजदीक है, इसलिए हमारा फर्ज बनता है उनको सुधारना, उनको सही रास्ते पर लेके चलना और उसके पहले खुद चलना। तो मैं समझता था कि मेरे को बिना कोई बोले मैं घर में अच्छा रहता हूँ, अच्छा चलता हूँ, इन लोगों को क्या हुआ, मनमर्जी चलते हैं, कुछ भी करते हैं, कैसे भी रहते हैं, मानते नहीं माँ बाप का भी, तो संदोष में आ जाते हैं। तो मैं उन सबको बचाने के लिए उनको स्ट्रिक्टली सुबह से शाम तक मैं अपने साथ ही लेके चलता था, बहुत एकदम कड़क रखता था। तो वो लोग मानते भी थे, छोटे थे, बड़ा भाई होने के कारण रिस्पेक्ट भी रखते थे। माँ बाप ने मेरे को छुट्टी दी थी, उनको जो करना करो संभालो अच्छी तरह। तो मैं कुमार लाइफ का तो मेरे को थोड़ा लगता है कि अकेलापन का कभी अनुभव नहीं हुआ, घर में भी परिवार बड़ा था उसके कारण, और पुणे में आया तो उनको लेके साथ में रहना करना बना के खाना, पर यहाँ आने के बाद तो इतना बृहद परिवार है, इसलिए बाबा बोलते कभी कभी प्रवृत्ति में रहने से प्रवृत्ति के प्यारे हो जाते हो, न्यारे नहीं हो सकते हो। इतना बड़ा परिवार बाबा ने दिया है, इतना अच्छा प्यार दिया है निस्वार्थ, जो न्यारा रहता है वही हर कर्म में प्रभु प्यार अर्थात बाप के प्यार का अनुभव करता है। अगर न्यारे नहीं रहते तो परमात्म प्यार का अनुभव भी नहीं रहते। किससे न्यारे रहना है? देह से, देह के भान से, देह के संबंधियों से, इससे परे रहना, न्यारे रहना है। और प्यारे किसके रहना है? अपने प्यारे हो ही जाते हैं इतने इससे न्यारे हो जाएंगे। और ब्राह्मण जीवन में विशेष आधार परिवार का प्यार है। शुरू शुरू में जब मैं ज्ञान में मना आया कैसे, ये एक भाई प्यार से बोलता है, और अब भी सुनो मैं दूर से देख रहा था अंबेडकर का वो लगा था प्रदर्शनी का, मतलब पैसा लेंगे या कुछ पता नहीं किस धर्म का, इसलिए मैं दूर से ही देख रहा था, वो बड़े प्यार से बोला, आप भी सुन सकते हैं, इतना प्यार से बोला, वो शब्द मेरे को थोड़ा अच्छा लगा, इतना प्यार कौन कर सकता है उसको, अननोन व्यक्ति एकदम, वो बोला थोड़ा नजदीक आए और नजदीक आओ सुनो बोला, तो सुनता गया, ये भी एक प्यार का वहां से शुरुआत हो। फिर वैसे भी कहा जाता है प्यार है तो जीवन है, सचमुच दुनिया में भी देखा है, परिवार में भी देखा है, जिस परिवार में प्यार नहीं होता ना वो परिवार नहीं होता, उसको परिवार नहीं कहते, वो तो एक कारावास जैसा लगता है, ऐसी जेल में जैसे जेल वर्ड, वो रहना भी पड़ता है, जाएंगे कहाँ, भले नहीं जमता, खटपट होती है, अनबन होती है, रहती है, हिसाब किताब है, जो भी है, फिर वो उसके बाद आती है, प्यार नहीं तो वो परिवार नहीं, वो जीवन नहीं। वैसे भी कहा जाता है प्यार है तो जीवन है, प्यार नहीं तो जीवन नहीं। तो ब्राह्मण जीवन का भी आधार है विशेष कौन सा प्यार? परमात्म प्यार, क्योंकि परमात्म प्यार ही सभी बातों से छुटकारा दिलाता है, नहीं तो मुश्किल है वो। ज्ञान के आधार से भी, सबके स्नेह सहयोग से भी कितना दिन चलेंगे, जब तक गहराई से बाबा के साथ का प्यार का अनुभव नहीं करते हैं, नहीं होता है, तो मुश्किल है, मतलब ज्यादा दिन अच्छी तरह से चल सके, धक्का मार गाड़ी वाली हो जाती, फिर कितना दिन सपोर्ट करेगा कोई। एक परमात्म प्यारी है ब्राह्मण जीवन को चलाने का, तभी वो सब वो तब मिलेगा जब शर्त है उसके लिए भी परमात्म प्यार का। दुनिया में भी बोलते प्यार करना तो सहज है, लेकिन उसको निभाना सहज है, लेकिन यहाँ कौन सा निभाना है हमको? सदैव न्यारे रहना, सदा न्यारे रहना है। लगाव है तो परमात्म प्यार नहीं, न्यारा है तो जितना जिस चीज को छोड़ते हैं ना वो चीज पीछे पड़ती है, ये देखा है हमने, जिस चीज के छोड़ो वो पीछे पड़ते हैं, वो अपने आप आ जाता है, और जो उसके पीछे पड़ो वो दूर होता रहता है। इसीलिए गायन है जितना न्यारा उतना प्यारा। बाबा देखो कितना प्यारा है, क्यों प्यारा है, सबसे न्यारा है और सदा न्यारा है, कोई वो नहीं। वैसे स्थूल रूप में लौकिक जीवन में अगर कोई न्यारा हो जाए तो कहेंगे ये प्यार का पात्र नहीं है, रुका सूखा लगता है, ये अलग ही सन्यासी आदमी कैसा है, मतलब उसको देख के उसको भी मजा नहीं आएगा, दूसरों को भी, अकेला अकेला रहता। लेकिन यहाँ जितना न्यारा उतना प्यारा, जरा भी लगाव नहीं, सेवादारी, घर में रहते हैं लेकिन जहां भी जिसका भी पार्ट है वो ऐसा नहीं समझे कि सेंटर पर रहने वाले समर्पित रहने वाले ज्यादा होशियार है, ज्यादा उनका भाग्य है, ऐसा नहीं है। बाबा कहते जिस घर में जिस स्थिति में कुमार है, आदर कुमार है, बुढ़ा है, बच्चा है, जिस स्थिति में जहाँ जिस समय जो जिसको ज्ञान मिला, पाठ मिला, वो समझ करके चलने से हम उससे मुक्त रह सकते हैं। अगर प्रवृत्ति में रहते हो तो सेवा के लिए रहते हो, और सचमुच मैंने यही संकल्प किया था ज्ञान में आने के बाद, तो सेवादारी सेवादारी मतलब बहुत अच्छा लगता था। फिर वो रूप चेंज हो गया, सोचने का भाव भावना, भाइयों की सेवा करने का। कभी भी ये नहीं समझो कि हिसाब किताब है, कर्म बंधन है, कभी कभी थोड़ा भारी लगता है, इनको काम करना पड़ता है, इतना सुबह से लेकर शाम तक काम करो, फिर घर में काम करो, फिर बच्चों को संभालो, कितना झंझटबाजी है इनका। लेकिन अगर सेवा के भाव से सोचते हैं, सेंटर पर भी क्या है, सुबह से शाम तक सेवा तो करना पड़ती है, वही अगर सोच उधर घर में लगाते हैं तो सेवादारी का रूप हो जाता है, तो हल्के रहेंगे। सेवा के बंधन में बंधने से कर्म बंधन खत्म हो जाता है। इस संडे के मुरली में था ना, यथार्थ सेवा का कोई बंधन नहीं होता। जब तक सेवा भाव नहीं होता तो कर्म बंधन खींचता रहता है, दुख देता है, खींचता रहता है। बाप ने डायरेक्शन दिया है, उसी श्रीमत पर अगर रहते हैं, जहां भी रहते हैं, जो भी पार्ट मिला हुआ है, अपने हिसाब किताब से नहीं, अपने मोह के बस, अपने अपने को अच्छा लगता है इसलिए नहीं। कर्म बंधन है या सेवा का बंधन है, उसकी निशानी है, उसकी क्या निशानी होगी,
कर्म नहीं तो सुख होगा।
कर्म बंधन है तो दुख की लहर आती रहेगी, और सेवा का बंधन होगा तो दुख की लहर नहीं आएगी, खुशी रहेगी। तो कभी भी किसी भी समय अगर दुख की लहर आती है तो समझो कर्म बंधन है। कर्म बंधन को बदलकर अगर सेवा का बंधन नहीं बनाया है तो अभी तक क्या कहें, परिवर्तन करना आया नहीं या किया ही। कर्म बंधन को बदलकर सेवा का बंधन नहीं बनाया है, परिवर्तन करना नहीं आया है, विश्व सेवादारी नहीं बने अभी तक। तो विश्व में जहां भी हो तो विश्व सेवा अर्थ है, चाहे मधुबन में है, मधुबन में तो सारे विश्व के लोग आते हैं, हमको तो अच्छा मौका है घर यहीं बैठे सबकी सेवा करना, लेकिन घर बैठे भी अगर अपने घर को, परिवार को, समाज को भी अगर सुधारने का संकल्प रख के पाठ बजाते हैं तो हम विश्व सेवादारी हैं। तो ये पक्का याद रहता है या कभी कर्म बंधन में फंस भी जाते हो, सेवादारी कभी फंसेगा नहीं। सबसे बेहद सेवादारी कौन है, संडे के दिन था सब स्टार्टिंग से ही, सबसे बेहद सेवादारी, सबसे पहला सेवादारी ब्रह्मा बाबा, वो कभी थकता नहीं। दादी बोलती थी सबसे बड़ा गृहस्थी तो बाबा है, सबसे ज्यादा बछड़ेवान तो ज्यादा बाबा है, और संगम पर हमारा कितना छोटा परिवार है लेकिन बेहद है, छोटा परिवार में छोटे संबंध, हमारे संगम पर कितने संबंध है, चार संबंध, बाप भाई बहन, और कलयुग में वो लौकी के परिवार में बहुत सारे लंबा चौड़ा लिस्ट है, और उनके लिए सबके लिए बहुत सारा ध्यान रखना पड़ता है। वो न्यारा और प्यारा रहेगा सेवादारी, ऐसा जो कर्म बंधन में नहीं फंसेगा। समझते हो तो न्यारे रहना है, कि समझते तो हो कि न्यारे रहना है, लेकिन जब कोई परिस्थिति आती तो उस समय न्यारे रहते हैं, और कोई परिस्थिति नहीं है तो उस लौकिक में, उस समय तो लौकिक में भी न्यारे रहते हैं, लेकिन अलौकिक जीवन में शर्त है सदा सदा ही न्यारे, कभी कभी न्यारे नहीं सदा ही न्यारे। कभी कभी वाले तो राज्य भी कभी कभी करेंगे, सदा राज्य करना है तो सदा भी सदा न्यारा भी रहना है। इसलिए सदा शब्द को अंडरलाइन करो, सब संस्कार अभी भरने हैं। सब संस्कार कौन से? अभी कभी कभी के सदा, सदा के संस्कार अभी भरने हैं, इसलिए सदा शब्द को अंडरलाइन करो। अगर कभी कभी के संस्कार भरे तो वही भरे हुए संस्कार ही काम करेंगे। जैसे रिकॉर्ड भरते हैं तो अगर थोड़ा भी नीचे ऊपर भर दिया है तो वैसे ही भरेगा ना। तो संगम पर ही 84 जन्मों के श्रेष्ठ राज्य करने के ऊंच पद के संस्कार भरते हो। अभी हमारी रिकॉर्डिंग चल रही है, शूटिंग चल रही है, इसलिए अभी से हर पुरुषार्थ के सब्जेक्ट में सदा याद रखो, चारों सब्जेक्ट में फुल मार्क्स लेने का ध्यान रखना है। सदा की चल रहे हैं, लेकिन क्या समझना है, चल रहे हैं क्या हम लोग? बाबा चला रहा है, दादी गुंजान की कब सुनाया था ना, बाबा आप बहुत अच्छे चला रहे हो, आप बहुत अच्छे हो। बोला नहीं, तुम भी बहुत अच्छी हो, तुम चल रही हो इसलिए मैं चला रहा हूँ। फिर बाबा कह रहे हैं आप बहुत अच्छा कर रहे हैं पुरुषार्थ कर रहे हैं नहीं करा रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, लेकिन किस गति से चल रहे हैं? अगर बाबा करा रहा है, बाबा चला रहा है तो तीव्र चलेंगे। हम सोचेंगे हम कर रहे हैं, होता नहीं, करना है, तो फिर वही वाली गति हमारी धीमे हो। कर रहे हैं लेकिन कैसा कर्म कर रहे हैं, ये तो चेक करना पड़ेगा ना। तो न्यारे रहने की निशानी क्या है? परमात्म प्यार की अनुभूति। और जितना प्यार होता है उतना अलग नहीं होते, सदा साथ रहेंगे। प्यार उसको ही कहा जाता है जो साथ रहे। तो परमात्म प्यार अर्थात सदा परमात्म साथ हो। दादी जान के कभी इंटरव्यू लिया था ना, आपकी शादी हुई है? बोला हाँ हुई है। बच्चे हैं? बोला है। तो हमारा भी, मैंने देखा अपने आप सोच रहा था, मेरी भी शादी हुई है। किससे? शिव बाबा से। उसकी फिर हम शिव बाबा के सजनी को पवित्रता को धारण कर रहे हैं हम लोग, तो हम सजनी हो गए, तो हमारे बच्चे सुख शांति। तो सुख शांति अगर जीवन में है, हर कर्म हर हर मतलब रोज की लाइफ में अगर सुख शांति का अनुभव होता है तो मेरे बच्चे साथ मेरे साथ। तो ये निशानी, लौकिक में भी पति पत्नी का प्यार होता है तो उनकी निशानी है बच्चे, प्रमाण है उसका। तो हमारा बाबा के साथ प्यार है, हमारी निशानी क्या होगी? हमारी लाइफ में कभी कभी दुख की लहर नहीं आ सकती, हम कभी कभी कहीं फंसेंगे नहीं, हल्के रहेंगे, उड़ते रहेंगे। सुख बेटा है, शांति बेटी है। दादी जानकी ने बहुत अच्छा विस्तार से इसके ऊपर क्लास कराया था। हाँ, सत्यु का परिवार अभी है। कभी अपने को अकेले तो नहीं समझते हो, बाप साथ है ना। जब साथ है तो, जब बाप साथ है तो बोझ अपने ऊपर नहीं उठाओ ना, बोझ बाप को देकर हल्के हो जाओ। बोझ रखते हो तो परेशान होते हो, हल्के रहो तो उड़ते रहेंगे। सब कुछ बाप के हवाले कर दो, जब कुछ है ही नहीं तो बोझ का आएगा। कुछ रखा है तभी बोझ है, तभी परेशानी है। बाप के हवाले नहीं किया है, थोड़ा छुपा कर जेब खर्च रख लिया है ना, जेब खर्च का बड़ा आनंद आता, अपना अलग मजा होता है, पर्सनल यूज कर सकते हैं। कौन सा जेब खर्च? ट्रस्टी होकर रहना पड़ेगा बाबा का संभालना। हाँ, सब कुछ बाबा के हवाले, तन मन धन कैसे करें बना, जो भी है अपने पास बाबा ने दिया हुआ है। जैसे बाबा ने कहा एक बार, अभी तुमने ये तन भी तुम्हारा सड़ा हुआ है, तुम क्या तन लेके बोल, तन मन धन समर्पण किया बोलते हैं, क्या मन है तुम्हारा? मन भी कितना मन बेकार था, दूषित था, अपने आप के दुश्मन थे, दूसरों को दुश्मन समझ रहे थे। और धन क्या था? कुछ भी नहीं था, था ही नहीं,
काली धन, काला धन,
काला धन। तो तन मन धन क्या समर्पित किया है? और इसके बदले में बाबा क्या दे रहे हैं, ऐसा सोचे दूसरा। फिर अगर है तो जो भी जितना भी है जिसके पास, जो इस कलयुग में भी बहुत अच्छे संपन्न परिवार के है, तो उनके पास जो भी जायदाद है, प्रॉपर्टी है, तो बाबा का है, सेवा के लिए मिला हुआ है, ट्रस्टी ये बाबा ने दिया है, ट्रस्टी होकर समझे। अभी इस प्रकार से वो अभी आप बताएंगे अच्छी तरह से हवाले कैसे करना है, हमने तो इस प्रकार से सोचा है। हाँ, वो तो सफल समझ। और जब जेब खर्च होता है तो कभी कभी काम में आ जाता है। तो माताओं ने जेब खर्च रखा है, माताओं का जेब खर्ची कौन सा? पोतरे धोतरे में मोह, बच्चे तो बड़े हो गए, उनके फिर ब्याज पोत्रे दोत्रे में एक्स्ट्रा मोह है, और भाइयों का
रोग क्रोध
रोग नष्टो मोहा बने हो, नष्टो क्रोध नष्टो रोग। तो बाबा उसके बदले में कह रहे हैं कि अधिकारी समझते हैं तो रोग आ जाते हैं। हम कह के स्वराज अधिकारी हैं, अपने आप के बाबा के प्रॉपर्टी के ऊपर हमारा अधिकार है, लेकिन वो छोड़ करके हम स्थूल रूप में अपने से छोटे वालों को या किसी के ऊपर रोग करते हैं इंचार्ज के आधार पर या कोई अथॉरिटी के आधार पर। तो बाबा कहते हैं वो भी अपना वो काम की चीज नहीं है ना, देख लिया ना उसका भी। नष्टो मोह अर्थात न्यारा प्यारा, सार है नष्टो मोह अर्थात भाइयों के लिए चाहे बहनों के लिए माताओं के लिए न्यारा और प्यारा, रहते हुए भी न्यारा। तो माताएं सभी हिम्मत वाली हो, इस वर्ष मोह नहीं आएगा, मोह तो आधा कल्प का साथी है, ऐसे कैसे चला जाएगा। देख लिया ना नष्टो मोह बनने से क्या होता और मोह रखने से क्या होता, तो देखेंगे अभी इस नए वर्ष में क्या कमाल करते हैं। अच्छा ओम शांति।
ओम शांति। बाबा ने कहा सब कुछ पाप को दे दो, क्या क्या देंगे और कैसे देंगे, हर एक बात बाप के हवाले कर दो। इसमें बाकी बातें तो है ही, धन मन धन जो भी है, परंतु साथ में हर एक वो बात, हर एक वो चीज, हर एक वो घटना जो हमारे जीवन में हुई है वो उसे सुना देना और हल्का होने देना। कोई ना कोई ऐसी बात है जो हुई है जो हम किसी और को नहीं सुना सकते, कई सारी ऐसी बातें हैं जो रखी हुई है, वो हर एक बात जो जीवन में घटित हुई है वो हर बात एक बार पूर्ण बाबा को सुना देना। कुछ भी बात किसी भी कोने में, मन के कोने में रखनी नहीं है। तो जितना हम ट्रांसपेरेंट रहेंगे, क्लियर रहेंगे, कोई भी रिलेशनशिप जो लौकिक में भी होता है दो व्यक्तियों का, दो व्यक्ति अगर कुछ कुछ छुपाते हैं तो समझ में आना चाहिए कि कुछ तो गड़बड़ है। जैसे दिखाते अगर दो लोग हैं, पति पत्नी, और पत्नी को बार बार फोन आता है, पर पत्नी जो है फोन अटेंड करने कमरे से बाहर जाती है हर बार, कुछ तो है जो उसे पति को नहीं बताना है, छुपा के रखना है। तो एक निशानी ऐसी है कि फोन आएगा तो बाहर जाके बात करेंगे, तो वो ट्रांसपेरेंसी वहां नहीं है। तो हम और बाबा इसके बीच में हमें संपूर्ण ट्रांसपेरेंट रहना, हम जो है उसके सामने वैसे के वैसे रहे। बहुत सारी बातें ऐसी नहीं हो कि जो हमारे मुख से निकल रही है या हम कर रहे हैं या संकल्प चल रहे हैं, पर हम जब योग में बैठते हैं तो वो सब विलीन हो जाता है, हम उसको वो सब नहीं सुनाते। हमें उसके सामने संपूर्ण ट्रांसपेरेंट रहना है, एकदम क्लियर कि ये है, चाहे अच्छा है चाहे गलत हो, जो कुछ भी हो, और सब कुछ उसको सुनाना, सब कुछ उसको बता देना, और फिर उसका समर्पण कर देना। भक्ति में एक शब्द है शरणागति, भक्ति का शब्द है शरणागति, अर्थात संपूर्ण उसकी शरण में चला जाना, संपूर्ण। हम भले शिव बाबा की भक्ति नहीं करते, परंतु फिर भी हम उसकी शरण में, उसकी पनाह में है। इसके लिए ना जगदीश भाई क्या कहते हैं, शिव बाबा को कोटि कोटि प्रणाम चाहे कुछ भी हो, परंतु उसने सब कुछ किया है, दया उसकी है, कृपा उसकी है, आशीर्वाद उसकी है, बाबा तेरा धन्य धन्य, कोटि कोटि तुझे साष्टांग दंडवत करता हूँ। दूसरा बाबा ने कहा यहाँ प्यार के बारे में बात कर रहे हैं, प्यार अर्थात न्यारा, प्यार अर्थात सदा साथ, प्यार अर्थात विकारों से मुक्त, प्यार अर्थात जहाँ मोह नहीं है। ये मार्ग ऐसा है कि ये सारी ही चीजों को छोड़ना होता है, और ये मार्ग पर चलने वाले बहुत ही कम है। जैसे हम वो अपने प्रदर्शनी में दिखाते हैं ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, कितने पहुंचते हैं वहां तक, बहुत ही कम पहुंचते हैं, बहुत ही कम। तो ये मार्ग भी ऐसा है, जैसे एक कहानी में दिखाते हैं कि तिब्बत की बहुत प्रसिद्ध एक कहानी है, जिसमें ऐसे दिखाते हैं कि एक आश्रम रहता है छोटा, और उसकी एक शाखा होती है बड़ी, जैसे हमारा कोई छोटा सेंटर और बड़ा सेंटर, तो छोटा सेंटर, छोटा जो आश्रम होता है उसका जो प्रधान होता है वो अभी मृत्यु शैया पर होता है, तो वो अपने शिष्य को भेजता है कि बड़े आश्रम पर जाओ और वहां के जो प्रधान है उनको कहो कि कोई तो यहाँ एक भेजे कि जो इसका प्रधान बन जाए, इसका इंचार्ज बन जाए, क्योंकि अभी तो मैं जाने ही वाला हूँ। तो वो जो छोटा शिष्य रहता है वो भी बहुत ज्ञानी रहता है, वो जाकर उस दूसरे आश्रम में जाता है जो बड़ा सेंटर रहता है अपनी भाषा में, और उसके जो इंचार्ज, उसका जो हेड रहता है, उसको कहता है कि हमारे ऐसे ऐसे महंत जो है वो अभी जाने वाले हैं, तो उन्होंने कहा है किसी और को भेजो, एक व्यक्ति को। तो वो कहता है मैं तुम्हारे पास 100 सन्यासी भेजता हूँ तुमको। तो बोलते मुझे 100 नहीं चाहिए, एक ही चाहिए, क्योंकि एक को ही इंचार्ज बनाना है। तो कहता है 100 जाएंगे पर पहुंचेगा एक ही, इसके लिए 100 को ले जाओ। और वो जो फासला होता है बहुत लंबा फासला होता है, तो 100 निकलते हैं सन्यासी दूसरे दिन। 100 में से जाते जाते कईयों के घर आते हैं, लौकिक घर रास्ते में। तो कई अपने अपने घरों में जाते कहते बस अभी बस कई साल हो गए घर नहीं देखा, माँ बाप से नहीं मिले, भाई बहनों से नहीं मिले। तो कहते हैं हम अपने घर में जा रहे, बस आ ही रहे, 2-3 दिन में पहुंच जाएंगे, आप आगे चलो। ऐसे करते करते कम से कम 90 लोग चले जाते हैं, बच जाते केवल 10। तो 90 लोग तो चले गए, अभी 10 बच गए। तो वो जो रहता है सेवाधारी या सन्यासी जो आया रहता है, उसको लगता है कि वो बात सही कही थी उसने, अभी देखते हैं 10 में से क्या होता है। 10 लोग जाने लगते आगे आगे, तो वहां से फिर 3 राजा के सिपाही आ जाते हैं। वो कहते हैं कि हमको 3 सन्यासी चाहिए, राजा के बेटी की शादी है और 3 पुरोहित चाहिए, और आप अगर जाएंगे तो आपको बहुत धन भी मिलेगा, अगर नहीं जाओगे तो दंड मिलेगा। तो उसमें से 3 तुरंत तैयार हो जाते वो कहते हैं कि अच्छी बात है कि चलो, नहीं तो दंड तो मिलना ही है वैसे भी, तो क्यों ना चले जाए। तो वो 3 उसमें चले जाते हैं। फिर बच जाते हैं 6 बच जाते हैं। फिर थोड़ा और आगे जाते हैं, और आगे जाते हैं, और आगे जाते हैं, तो वहां पर एक कुछ और सन्यासियों का ग्रुप आता है, कहता है कि हमारा जो आश्रम है, एक दूसरा आश्रम है, वहां के प्रधान की मृत्यु हो गई है, तो हमें तुरंत किसी एक प्रधान की नियुक्त करना है, तो आप में से कोई अगर तैयार हो जाए वहां चलकर इंचार्ज बनने के लिए तो अच्छा होगा। तो तुरंत उसमें से एक तैयार हो जाता है तो एक भी गया। ऐसे करते करते ऐसे कई कारण होते हैं और अंत में केवल 2 ही बचते हैं, और 2 बिल्कुल अभी नजदीक ही होते हैं, बहुत नजदीक आश्रम के। तो उसमें से जाते जाते फिर वहां एक कन्या आ जाती है, एक युवती। वो कहती है कि मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई है, मैं अकेली हूं, मुझे बस कुछ 1-2 दिन के लिए कोई मेरे साथ रहे, क्योंकि ये जो जहां मेरा घर है आश्रम, वो भी एक आश्रम ही, आश्रम कन्या होती है, तो कहती है यहाँ पर बहुत हिंसक प्राणी है, कुछ दिन के लिए, 2 दिन के लिए कोई मेरे साथ रुक जाए तो बहुत अच्छा है। तो उसमें से एक ने, पर वो दोनों, वो जो दूसरा कहता है कि, वो कहता है कि आप चुनाव करो कौन रुकेगा, तो वो जो युवक होता है थोड़ा यंग, उसको चुन लेती है और वो हो जाता है उधर। फिर बच जाता है केवल एक ही, तो वो तो बस अभी बस पहुंचने ही वाला है कि बीच में एक गांव आ जाता है। एक गांव में आता है और वहां से जब गुजरते रहते तो एक व्यक्ति आह्वान करता है, बहुत ज्ञानी होता है, वो कहता है कि ये ईश्वर सब बकवास है, ये धर्म तो कुछ भी नहीं है, ये सब कल्पना है, अगर कोई है मेरे साथ वाद विवाद कर सकता है इस बारे में, मैं पूरा बता सकता हूँ कि ये जो धर्म जो है, ये जो ईश्वर है और ये जो आप धर्म की बातें करते हो सब बकवास है, तो इसका एकदम ये होता है, ऐसे कैसे कह सकते हो तुम, मैं तुमको बता दूंगा कि भगवान है। तो वो उसके साथ वाला व्यक्ति कहता है इससे वाद विवाद में क्यों फंसते हो तुम, छोड़ो ना इसको। बोलते नहीं, इसने मुझे चुनौती दी है और ये मेरे अभी ये पूरे मेरे धर्म का प्रश्न है, धर्म की आन और शान मेरे हाथ में है, अब अगर मैं इस समय हार गया, क्योंकि ये उसका अज्ञान, उसका अहंकार जागृत हो जाता है ना वहां पे, कैसे कोई कह सकता है भगवान झूठ है और ये सब झूठ है, मैं इससे वाद विवाद करूंगा। तो बोलते अगर जब तक मैं इसको हरा नहीं दूंगा मैं तो आने वाला नहीं हूं अगर मैं हार गया, अगर मैं हार गया तो मुझे उसका शिष्य बनना पड़ेगा, अगर मैं जीत गया तो मैं आ ही जाऊंगा, तुम जाओ, मैं बस पहुंचने ही वाला हूं। और अंत में वो जो व्यक्ति रहता है जो अकेला जाता है, वो अपने शिष्य के, अपने गुरु के पास पहुंचता है और कहता है कि भाई सारे चले गए, तो कहते हैं कि तुम ही योगी हो बस और इनमें से जितने थे ये सौ कोई भी योग्य नहीं था। तो ये जो परमात्मा का मार्ग है इसमें बहुत ज्यादा समर्पण भाव चाहिए। कितने सारे हमारे प्रलोभन आएंगे, कोई इंचार्ज बना रहा है, कोई किसी के साथ, कोई स्त्री आ रही है, कोई कुछ आ रहा है, किसको घर लौकिक घर याद आ रहा है, यहाँ लक्ष्य इंडिया आ जाता है। इतने ये मार्ग इतना सूक्ष्म है कि इसमें पता नहीं चलता क्या हो रहा है। इतने सारे प्रलोभन है इसमें, इतने सारे कि जो हमको हमारा लक्ष्य से हटा देते हैं। इसके लिए मैंने कहा ना, कोटो में कोई और कोई में भी कोई, यहाँ वालों में भी, पहुंचने वाले जो है लास्ट में बहुत 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 कम है। तो कितनी खबरदारी रखनी पड़ेगी कि कोई भी विकार, कोई भी संकल्प, किसी का भी मोह, कोई अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता है, कितने सारे मार्ग, इस मार्ग में इतनी सूक्ष्म सूक्ष्म बाधाएं हैं, इन सबको पार करते हुए हमें जाना है। कि हमारा अगर पर सहज भी बहुत है, परंतु प्यार अगर एक से है तो ये हो सकता है। कहीं पर भी बुद्धि ना जाए, कोई भी संसार का कोई व्यक्ति हमें आकर्षित ना करे, अपवित्रता का कोई संकल्प ना आए, अपवित्रता की कोई एक झलक भी स्वप्न में ना आए, हमारा देखना भी इतना शुद्ध हो, हमारा सुनना भी शुद्ध हो, ऐसी कुछ चीजें देखे ही नहीं, सुने ही नहीं, करे ही नहीं कि जिससे मन में विकार उत्पन्न हो, तो ये मार्ग बहुत सहज है, अन्यथा बहुत कठिन है और प्रलोभन बहुत ज्यादा है। अच्छा, ओम शांति। अरविंद भाई, कल आगे का ग्रुप।